सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय उधरसेननाहो जैन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणो धरियो समप्पियो फुफयन्तस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं पुस्तक में हमने 104 पृष्ठ पर आ गए हैं। अब यहाँ लेशा का प्रकरण चल रहा है। लेशा मार्गणा के अनुसार जीव कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला आदि क्यों होता है, कैसे होता है या किस कारण से होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था 60 नंबर की सूत्र में, और उसका उत्तर दिया था 61वें सूत्र में कि औदयिक भाव से जीव कृष्ण आदि लेशा वाला होता है। अब इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे की लाइन, अंतिम लाइन, शंका। यदि कषायों के उदय से लेशाएं कही जाती है तो 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय जीवों के लेशा के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि कषाय उनके पहले उन्होंने 6 भाग कर दिए, तो उसमें मंद मंदतर मंदतम लिए और यहाँ तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम लिए, तो उस पर शंकाकार पूछता है कषाय के उदय से आप लेशा कहते हो। उन्होंने तो अकेले 12वें गुणस्थानवर्ती का ही नाम लिया, परंतु 11वें 12वें 13वें के भी लेशा बताई है शास्त्र में। समाधान, सचमुच ही क्षीण कषाय जीवों में लेशा के अभाव प्रसंग आता यदि केवल कषायोदय से ही लेशा की उत्पत्ति मानी जाती। अकेले कषाय के उदय से लेशा नहीं है। लेशा की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, यानी कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशा। तो कषाय तो भले मिट गए परंतु यह वहां योग पाया जाता है, इसलिए वहां लेशा भी बताई जाती है। किंतु शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग, हमने पहले देखा था योग क्यों उत्पन्न होता है, तो शरीर नाम कर्म जो है उसके उदय से वह योग भी लेशा है यह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह भी कर्म के बंध में निमित्त होता है। कर्म बंध के कारण हमने देखे थे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, प्रमाद को कषाय में गर्भित किया था, तो ये योग भी बंध का कारण है, इसलिए इसको भी लेशा कहा है अकेले योग को। इस कारण कषाय के नष्ट हो जाने पर भी चूंकि योग रहता है, इसीलिए क्षीण कषाय जीवों को लेशा सहित मानने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि वहां योग है। शंका, यदि बंध के कारणों को लेशा रूप कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेशा रूप क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? बंध के कारणों को लेशा कहते हो तो प्रमाद को भी कहो, तो कहते हैं क्योंकि प्रमाद का कषायों में अंतर्भाव हो जाता है, उसको अलग से नहीं बताया तो भी कहीं कहीं अलग उसका कथन भी आता है, प्रमाद कषाय और योग, और यहां नहीं कथन आता है, वह कषाय में ही उसको अंतर्भूत कर लिया जाता है। फिर शंकाकार कहता है असंयम को भी लेशा भाव क्यों नहीं मानते? नहीं, क्योंकि असंयम का भी लेशा कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। फिर पूछता है मिथ्यात्व को लेशा रूप क्यों नहीं स्वीकार करते? तो तो उसका समाधान करते हैं। मिथ्यात्व की लेशा संज्ञा होवे, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में तो कोई विरोध नहीं आता, परंतु किंतु यहाँ कषायों का ही प्राधान्य है, क्योंकि कषाय ही हिंसा आदि रूप लेशा कर्म के कारण है और अन्य बंध कारणों में उनका अभाव है। यह कषाय की मुख्यता से ही वो कषाय प्लस योग ऐसी बात बताई है, परंतु बंध के कारण में सबसे पहले में पहले मिथ्यात्व को ही लिया है। ये तो लेशा वाले जीवों की बात हुई। अब अलेशिक जीव या अलेश जो है, तो जीव अलेशिक कैसे होता है? ऊपर पढ़ना, हाँ, अलेश्यो नाम कदम भवदी, 62 नंबर का सूत्र है ना, उसका अर्थ है नीचे दिया है, जीव अलेशिक कैसे होता है? यहाँ भी निक्षेप के आश्रय से प्ररूपणा करनी चाहिए। ये अलेशा वाला वो निक्षेप लगाना उसमें सारे, तो उसका उत्तर देते हैं, खैयाए लब्धी, क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है। लेशा वाला क्यों होता है? तो कहा था औदयिक भाव से। तो अलेशिक कैसे होता है, हुआ जाता है? उन कर्मों का क्षय होने से, तो क्षायिक लब्धि से कहा। लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए। अभी कारणभूत कर्म हमने देखा था, कषाय के कारणभूत कर्म और योग के कारणभूत कर्म, उनका जब क्षय होगा तो उसको कहेंगे क्षायिक लब्धि से। तो लेशा के कारणभूत कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं। उसी क्षायिक लब्धि से जीव अलेशिक होता है, यह सूत्र का तात्पर्य है। तो उपशम भाव से कोई अलेशिक होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि 11वें गुणस्थान में योग है ना वहां पर, परंतु ये 14वें की बात है, अलेशा वाला 14वां और सीधे भगवान। शरीर नाम कर्म की सत्ता का होना क्षायिकत्व के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि क्षायिक भाव शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है। यानी वो योग शरीर नाम कर्म का उदय रुक जाना, क्षय हो जाना, उसको क्षायिक भाव नहीं कहा है, परंतु ये जो सारे कषाय कर्म में कारणभूत जो मोहनीय है उसका क्षय होगा, तो वहां क्षायिक भाव बताया। अब भव्य मार्गणा की बात करेंगे। भवियानुवादेन भव सिद्धियो अभव सिद्धियो नाम कदम भवदी। भव्य मार्गणानुसार जीव भव्य सिद्धिक व अभव्य सिद्धिक किस कारण से होता है? अब इसमें 5 भाव लगाना है। कौन से भाव लगेंगे? औदयिक लगेगा का क्षोभशम लगेगा? भव्य, हाँ, भव्य अभव्य में पारिणामिक, क्योंकि किसी कर्म के उदय से, क्षोभशम से, क्षय से ये भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये तो यह सूत्र सुगम है ना, अर्थ उसका क्लियर है। तो उसका उत्तर देते हैं, पारिणामेन भावेन, पारिणामिक भाव से जीव भव्य सिद्धिक व अभव्य सिद्धिक होता है। ये सिद्धि क्यों लगाया? भव्य ने होने योग्य, तो क्या होने योग्य? तो सिद्ध होने योग्य, तो इसलिए उसको भव्य सिद्ध कहते। सिद्ध कहो या सिद्धिक कहो, एक ही बात है। तो भव्य सिद्ध कहेंगे या अभव्य सिद्ध कहेंगे? सिद्ध होने के लिए जो योग्य नहीं है उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, तो जो अभव्य उनके सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। प्रायोगिक लब्धि तक तो आ सकते हैं, परंतु आगे करण लब्धि का उनका परिणाम कभी नहीं होगा, 3 काल में कभी नहीं होगा। ऐसे भव्य भी है जो पड़े रहेंगे, है तो भव्य, परंतु वो भी इतने ही भव्य, क्योंकि हम देखते हैं ऐसा कभी नहीं आएगा काल कि सभी भव्य मोक्ष चले गए और संसार में अकेले अभव्य रहे, ऐसा होगा ना कभी? ये तो नित्य निगोद में ही कितने ही भव्य पड़े रहेंगे, और संसार अवस्था में घूम के फिर इतर निगोद में भी जाने वाले कितने ही भव्य होंगे। है तो उनमें कैपेसिटी, परंतु कभी वो प्रकट ही नहीं होंगे, पर्याय में उस रूप नहीं परिणाम, परंतु उनमें शक्ति है, तो ये ऐसे भव्य और अभव्य जो है वो पारिणामिक भाव है। यह सूत्र भी सुगम है। अब जो अगला सूत्र है, नैव भव सिद्धियो नैव अभव सिद्धियो नाम कदम भवदी। जो भव्य भी नहीं और अभव्य भी नहीं, ऐसा कोई हो सकता है शरद भाई? जो भव्य भी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, कौन? हाँ, अरिहंत सिद्ध। अरिहंतों को क्या कहेंगे? अरिहंत भी अभी भव्य है। सिद्धि, सिद्ध शब्द लगाए ना, सिद्ध होने योग्य, तो 14वें गुणस्थान तक तो हम भव्य कहेंगे, परंतु जो हो चुका है, सिद्ध हो चुका, उसको वो भव्यत्व अभी उसकी अभिव्यक्ति हो गई, तो उसको होने योग्य नहीं कहेंगे, उनको तो सिद्धि किया सिद्ध कहेंगे, है ना? जैसे कोई मेडिकल में एडमिशन ली, अभी वो डॉक्टर होने जा रहा है, डॉक्टर होने के बाद उसको हम होने योग्य नहीं कहेंगे, वो हो चुका है। मुक्त हो जाते हैं ना, तो वो भव्य उनकी वो जो प्रकट है, जो योग्यता वो प्रकट हो गई, इसलिए संसारी जीवों में भव्य अभव्य कहेंगे। सिद्ध है वो भव्य और अभव्य से पार हो गए हैं। तो जीव न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक किस कारण से होता है, यह सूत्र भी सुगम है। तो कहते खैयाय लद्धिये, तो क्षायिक लब्धि से, हाँ 66 में हिंदी जो अर्थ है उसमें प्रश्न चिन्ह लगाना। सूत्र के अर्थ में कहते क्षायिक लब्धि से जीव न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक होता है, यह सूत्र सुगम है। क्षायिक ने आठों ही कर्मों का नाश होने पर, क्योंकि क्षायिक लब्धि तो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जीवों को विशिष्ट कर्मों के क्षय में होती है, परंतु यहाँ जब भव्य सिद्धिक से पार कब होगा, आठों ही कर्मों का नाश होगा तब। अब अगली मार्गणा जो सम्यक्त्व मार्गणा है, देखिए अभी सम्यक्त्व मार्गणा है, यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद करेंगे, तो कोई तो सम्यक्त्व वाले जीव है और कोई सम्यक्त्व से रहित है, तो सम्यक्त्व से रहित ऐसे कौन कौन से जीव आपको पता है दीपेश भाई? मिथ्या दृष्टि और सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, तो ये तीन हो गए। और जो सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है, उनके कोई भेद आपको पता है? हाँ, औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और क्षाउपशमिक या वेदक, ऐसे ये छह भेद हो गए सम्यक्त्व मार्गणा के अनुसार। अब उसको बताएंगे। सम्मतानुवादेन सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, कि सम्यक्त्व मार्गणानुसार जीव सम्यक दृष्टि किस कारण से होता है, तो क्या आप कह सकते हो किस कारण से होता है? अभी कौन कौन सी लब्धि लगाएंगे? हाँ, औपशमिक क्षाउपशमिक और क्षायिक, तीनों ही लगाएंगे ना इसमें? हाँ, तो ये प्रश्न को ही विस्तार से समझा रहे। क्या औदयिक भाव से सम्यक दृष्टि होता है? हम ही उत्तर देंगे ना, किसी कर्म के उदय से जीव सम्यक्त होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो रूल आउट करेंगे। क्या औपशमिक भाव से? हाँ, हो सकता है। क्या क्षायिक भाव से? वो भी हो सकता है। क्या क्षाउपशमिक भाव से? वो भी होगा। क्या पारिणामिक भाव से? पारिणामिक भाव से तो नहीं होगा, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में पाया जाता है। सम्यक्त की प्राप्ति पारिणामिक भाव से नहीं होगी, भव्य अभव्यत्व तो पारिणामिक भाव थे, इसलिए वहां तो ठीक था, वो कुछ पर्याय की बात नहीं थी। तो ऐसा मन में विचार कर पूछा गया है कि किस कारण से होता है, ये तो प्रश्न को उन्होंने विस्तार से समझाया। अब उसका उत्तर सुनेंगे हम। उव समी आए खैयाए खओ व समी आए लद्धिये, औपशमिक क्षायिक और क्षाउपशमिक लब्धि से जीव सम्यक दृष्टि होता है। दर्शन मोहनीय के उपशम से उपशम सम्यक्त होता है, क्षय से क्षायिक सम्यक्त होता है और क्षयोपशम से वेदक सम्यक्त होता है। इन तीनों सम्यक्तों का जो एकत्व है उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। एकत्व ने उसमें क्या कॉमन है सब में, तो सम्यक दृष्टि पना ये तीनों में है। किसी के औपशमिक है, किसी के क्षयोपशमिक है, परंतु कोई क्षायिक भी है, परंतु तीनों में एकत्व कौन सी बात का है, तो सम्यक दृष्टिपने का। चूंकि उस सम्यक दृष्टि के ये तीन भाव होते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिक लब्धि से होता है ऐसा कहा गया है। फिर शंका, एक ही सम्यक दृष्टि के तीन भाव कैसे होते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे पृथकभूत सामान्य एक के एक साथ अनेक वर्णों के होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहते हैं? पृथकभूत सामान्य। पृथकभूत सामान्य जो कोई चीजें भिन्न भिन्न है फिर भी उनमें समानता पाई जाती है, उसको कहा पृथकभूत सामान्य। ऐसे एक के, ऐसी कोई जो चीज है उसके एक साथ अनेक वर्णों के होने में कोई विरोध नहीं आता। हमारे घर में कोई सफेद ये गाय है, कोई काली काले वर्ण की है, कोई वो तो अनेक वर्ण वाली कबरी ऐसी होती है, तो ऐसे अलग अलग वर्णों की गाय है। तो पृथकभूत सामान्य ने गाय अलग अलग है, पृथक है, और उनमें गायपना ये सामान्य है, सभी गाय ही है, ये उनका सामान्य हुआ। सामान्य होते हुए भी उनमें अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, तो उसमें कोई विरोध नहीं है, ये पृथक है ना सभी। वैसे ये सारे सम्यक दृष्टि जो हमने तीनों प्रकार के देखे वे सारे अलग अलग है और उनमें कोई औपशमी, कोई क्षयोपशमी, कोई क्षायिक हो सकता है। एक ही जीव के एक ही समय में तीनों भाव नहीं है, ख्याल है ना? औपशमिक समय दृष्टि बाद में क्षयोपशम समय दृष्टि होता है और उसके पश्चात क्षायिक होता है। एक जीव के तीनों संभव है परंतु अलग अलग कालों में, परंतु यहाँ भिन्न भिन्न जीवों के एक ही साथ ये होने में कोई विरोध नहीं है, ये बात बता रहे हैं। उसी प्रकार एक ही समय दर्शन के अनेक परिणाम रूप होने में कोई विरोध नहीं है। अब पूछते हैं, ये तीनों का तो एक साथ बता दिया, अब अलग अलग पूछेंगे। खय्य सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, जीव क्षायिक समय दृष्टि किस कारण से होता है? यह सूत्र सुगम है, यानी वो प्रश्न समझ में आए ऐसे है। तो कहते खय्याय लब्धि, क्षायिक लब्धि से जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के निशेष विनाश, निशेष ने कुछ बाकी रखे बिना, पूर्णतः जो विनाश है, क्षय है, उसको क्षय कहते हैं। और उस क्षय से जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है वह क्षायिक लब्धि कहलाती है। हम देखते हैं जब जहाँ दर्शन मोहनीय का पूर्ण विनाश है, क्षय है, तो उसके पहले अनंतानुबंधी भी सत्ता में से निकल जाता है। निकल जाता है ना, क्या होता है, हमने देखा था पहले, अनंतानुबंधी के सारे ही परमाणु अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संज्वलन आदि अन्य रूप परिणमित होते हैं, इसको विसंयोजन होकर नष्ट हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी का जब क्षय हो जाएगा उसके पश्चात मिथ्यात्व का, फिर सम्यक मिथ्यात्व का, और बाद में सम्यक प्रकृति का भी क्षय हो जाता है। तो यहाँ बताया तो दर्शन हो, क्यों यहाँ तो क्षायिक का प्रकरण नहीं, अपना सम्यक्त्व गुण है और वो दर्शन मोहनीय से उसका संबंध है, इसलिए दर्शन मोहनीय के क्षय से इतनी बात सामान्य से बता दी। परंतु हमने तो पहले पढ़ा था अनंतानुबंधी का, तो पहले से ही क्षय हो जाता है, यानी ये सात प्रकृतियों का क्षय होता है, अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहनीय की तीनों, इसलिए यहाँ क्षायिक लब्धि का। उसी क्षायिक लब्धि से जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है। अब अगला सूत्र, वेदक सम्मादिट्ठी नाम कदम भवदी, जीव वेदक सम्यक दृष्टि किस कारण से होता है? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाना। यह सूत्र सुगम है, वेदक सम्यक दृष्टि कहो या क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है। वेदक कब कहते हैं? कर्म का वेदन उदय वाला है, तो यहाँ कौन से कर्म का उदय है दर्शन मोनी के? सम्यक प्रकृति का, इसलिए इसको वेदक भी कहा। तो यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर देते हैं, खो व समियाए लब्धि, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव वेदक सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक्त्व प्रकृति रूप देशघाती स्पर्धकों की यह उदय सम्यक्त्व प्रकृति का है, और सम्यक प्रकृति वो देशघाती स्पर्धक है। वहां पर अन्य जो हमने प्रकृतियां देखी थी, देशघाती प्रकृति होती है, परंतु उसमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु सम्यक प्रकृति ऐसी प्रकृति है उसमें एकमात्र देशघाती स्पर्धक ही होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में से देशघाती होकर इसकी उत्पत्ति हुई है। कोई सम्यक प्रकृति रूप से तो बंद होता नहीं है, जब पहले बार सम्यक होता है प्रथमोपशम सम्यक, उस काल में मिथ्यात्व में से ये तीन प्रकृति होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो यहाँ कहते हैं, सम्यक्त्व प्रकृति रूप देशघाती स्पर्धकों की अनंत गुणी हानि होने से उदय में आए हुए अति अल्प देशघातीपने की अपेक्षा उपशांत हुए उन सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों का चूंकि क्षोपशम नाम दिया गया है। क्या कहते हैं? ये सम्यक प्रकृति में भी वो तो उसका ये तो अनंत गुणाहीन होकर 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 उदय में उदय चलता रहता है, तो ऐसा होकर उदय में आना ही उसी को क्षोपशम नाम दिया है। तो इस क्षोपशम से उत्पन्न जीव परिणाम को क्षोपशम लब्धि कहते हैं। उसी क्षोपशम लब्धि से वेदक सम्यक्त्व होता है। ये तो वेदक सम्यक्त्व की बात करेंगे, अब उपशम सम्यक्त्व की बात पूछेंगे। फिर उवसम्मा इट्ठी, उवसम चाहिए, पहले आया था ना उवसम सम्मा इट्ठी, ये उवसम्मा इट्ठी हुआ ना, उवसम सम्मा इट्ठी चाहिए। उवसम सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, नीचे अर्थ करते हैं, जीव उपशम सम्यक दृष्टि किस कारण से होता है? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ऊपर 72 में भी लगाया था ना हमने। यह सूत्र सुगम है। तो कहते उवसमियाए लब्धि, औपशमिक लब्धि से जीव उपशम सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम से उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति देखी जाती है। ये प्रथम उपशम सम्यक्त्व का बहुत विस्तार से हमने छठी पुस्तक में देखा था उसका विस्तार। अब अगला सूत्र, शासन सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी। ये सम्यक्त्व मार्गणा चल रहे हैं, उसमें तीन तो सम्यक्त्व के प्रकार लिए सम्यक दृष्टि के, अब शासादन और मिश्र और मिथ्यात्व ये तीनों रह गए, तो पूछते हैं शासन सम्मा इट्ठी नाम कदम भवदी, जीव शासादन सम्यक दृष्टि किस कारण से होता है? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाना। नहीं, वो समय सम्मा इट्ठी सब जगह है, लद्धि है, कौन सी बात है? सम्मा इट्ठी, हाँ ई रस्व ही होता है, ये दीर्घ ही नहीं है, वो रस्व कर देना उसको। देखिए ये 76 का भी अर्थ कहते हैं नीचे, यहाँ पहले के समान निक्षेपों को करके, निक्षेपों को करके यानी वो नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप लगाकर, नो आगम भाव सासाधन सम्यक दृष्टि का ग्रहण करना चाहिए। आगम भाव शासादन में शासादन संबंधी शास्त्र का जानकार जीव उसमें उपयोग वाला होता है, और नो आगम में वो शास्त्र के जानकार की बात नहीं है, परंतु उस रूप परिणत जीव है, सासादन भाव से परिणत जीव लिया है और ये वर्तमान में सासादन वाला है, इसलिए भाव निक्षेप में डाला उसको, और वो जानकार नहीं है इसलिए नो आगम लिया, बराबर। तो ये नो आगम भाव सासादन सम्यक दृष्टि कहा है इसको, उसका ग्रहण करना चाहिए। वह सासादन सम्यक दृष्टि कैसे होता है, अर्थात किस प्रकार से होता है, ऐसे सूत्र में पृच्छा की गई है, तो उसका उत्तर कहेंगे अभी। यानी वो अभी तक हमने जिस भाषा में पढ़े ना, उपशम से होता है कि क्षोपशम से होता है कि क्षय से होता है, यानी कौन से लब्धि से होता है, बोलो, नहीं मालूम सासादन कौन किसके उदय से होता? अनंत ने अभी यहाँ क्या कहते, देखो 77 में, पारिणामे न भावे न, ये दर्शन मोह संबंधी पारिणामिक भाव है, क्योंकि दर्शन मोह का ये सम्यक तो मार्गणा में दर्शन मोहनी की अपेक्षा है। यहाँ कहीं भी अनंतानुबंधी का नाम नहीं लिया है। सम्यक तो मार्गणा में औपशमिक सम्यक तो क्यों होता है, तो औपशमिक भाव से दर्शन मोहनी के उपशम से, क्षौपशमिक क्यों है, दर्शन मोहनी के क्षौपशम से या सम्यक प्रकृति के देशघाती के उदय से, और क्षायिक क्यों होता है, तो दर्शन मोहनी के क्षय से, तो सासादन क्यों होता है, अभी दर्शन मोहनी की भाषा में उसको उत्तर देना, दर्शन मोहनी को वहाँ क्या हो रहा है उसका संबंध में, तो कुछ नहीं हो रहा है। सासादन के लिए दर्शन मोहनी की कुछ अवस्था बदली नहीं है, जैसे चौथे में से गिरकर आया है वो दूसरे में, तो दर्शन मोहनी की किसी अवस्था के कारण नहीं आया है, दर्शन मोहनी ऑलरेडी उपशमित है वहां पर, तो उपशमित है तो उसमें कोई नई अवस्था नहीं बन रही है। हम देखिए यहाँ पढ़ेंगे, देखो हाँ पहले चार गुण स्थानों में, और यहाँ सम्यक तो मार्गणा मुख्यता से आपका कहना है, पहले चार गुण स्थान जो है वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा लगाते वहां, तो पहले गुण स्थान में दर्शन मोहनी का यानी मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे में उसका कुछ नहीं तो पारिणामिक भाव है, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, और चौथे में या तो उपशम है क्षय है या तो सम्यक प्रकृति का उदय है, फिर भी उदय है फिर भी औदयिक भाव नहीं, वो क्षोपशम भाव है। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक तो नहीं हो रहा है, उदय से तो सम्यक में मलिनता है, चलमल अगाढ़ दोष लग रहे, परंतु सम्यक्त्व का घात नहीं हो रहा है, इतना ही वहां लिया, देशघाती है ना वो, मिथ्यात्व का उदय हो तो पूरा ही घात सम्यक्त्व का, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो भी सम्यक्त्व का तो पूरा ही घात होता है, पर सम्यक प्रकृति का उदय हो वे तो पूरा घात नहीं होता, वो देशघाती है, सम्यक्त्व भी बना रहे और किंचित दोष भी लगे, जो क्षोपशम सम्यक दृष्टि का लक्षण बताए। अब यहाँ सासादन की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं पारिणामिक भाव से जीव सासादन सम्यक दृष्टि होता है। अब ये समझा रहे कैसे नहीं होता है, अन्य भाव क्यों नहीं है उसको बता रहे। यह सासादन परिणाम क्षायिक नहीं होता, क्योंकि दर्शन मोहनी के क्षय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती, क्षय से तो क्षायिक सम्यक तो होगा, सासादन की तो उत्पत्ति नहीं होगी। सासादन परिणाम क्षायोपशमिक भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनी के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। सासादन परिणाम औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनी के उपशम से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उपशम से तो औपशमिक सम्यक तो हुआ था, ख्याल है ना। सासादन परिणाम औदयिक भी नहीं है, औदयिक अभी दर्शन मोह पर औदयिक लगाना है, क्योंकि दर्शन मोहनी के उदय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अतएव पारिशेष न्याय से, पारिशेष ने अभी बाकी क्या बचा पाव भाव पांच भाव में से तो पारिणामिक शेष रहा, तो उसके भाव से कहेंगे। इसलिए पारिशेष न्याय से पारिणामिक भाव से सासादन परिणाम होता है, अन्य को रूल आउट किया, अभी एकमात्र बिचारा रहा पारिणामिक शंका। आपकी शंका यहाँ पूछ रहे हैं। देखो, वह उत्पन्न अनंतानुबंधी कषायों के उदय से सासाधन गुण स्थान उपलब्ध होता है। उत्पन्न क्यों लिखा? ऊपर क्या लिखा है? अनंतानुबंधिनम उदयेन शासन गुण सुवलंबादो उदयी भावो किन्न उच्चदे। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सासाधन गुण स्थान उपलब्ध होता है, तो उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते? वो उत्पन्न शब्द का किसका ट्रांसलेशन है विनोद भाई, कुछ ख्याल में आ रहे है? उपलब्ध आया ना शब्द आगे, देखो ठीक है, उत्पन्न अनंतानुबंधी कषायों के उदय से, सासाधन गुणस्थान उपलब्ध होता है, तब उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमने देखा था जब औपशमिक सम्यक तो चले ना, प्रथम औपशम सम्यक पर, तो वो कुछ काल के अंतर्मूर्त के लिए दर्शन मोह को उपशमित कर दिया है। अब वो काल पूरा होने के पहले, किसी के एक समय पहले या अधिक से अधिक छियावली तक अनंतानुबंधी कषाय का उत्पन्न हो जाए, क्रोध मान माया या लोभ, तो उसका सम्यक्त्व से वो गिर जाता है, मिथ्यात्व को अभी पहुंचा नहीं है। अनंतानुबंधी का तो उदय हुआ है, अब मिथ्यात्व का उदय जब होगा वो उपशम खलास होगा तब, क्योंकि उपशम जो है वो अंतर्मूर्त के लिए किया है, उसके पहले तो उपशम छूट नहीं सकता है। पहले ही अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, इसलिए ये जो बीच वाला काल है एक समय से लेकर किसी किसी के छह अवली तक का, वो उसका सासाधन का काल है। सम्यक तो छूट गया है और मिथ्यात्व के सन्मुख है। अनंतानुबंधी का उदय है, अभी मिथ्यात्व का उदय होना अभी बाकी है। वो उपशम वाला काल जो पहले फिक्स है उसके पश्चात ही मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा। यहाँ प्रश्न क्या है? अनंतानुबंधी का तो उदय हो गया है, इसीलिए तो सासाधन हुआ। यदि नहीं होता तो उसका सम्यक तो ही चलता ना औपशमिक, तो इसका औदयिक भाव क्यों नहीं कहते? ये अपना प्रश्न यहाँ पूछ लिया। नहीं, क्योंकि दर्शन मुनि के उदय उपशम क्षय व क्षोपशम मल डालना, क्षोपशम के बिना उत्पन्न होता है, इसलिए सासाधन गुणस्थान का पारिणामिक भाव स्वीकार किया गया है। यानी दर्शन मोहनी की कौन सी अवस्था है उसकी अपेक्षा से ये बात की है। नियम से अनंतानुबंधी का उदय सासाधन गुणस्थान का कारण नहीं है, क्योंकि वह चारित्र मोहनी है। क्या रे? नियम से नहीं, नहीं अनंतानुबंधी के उदय बिना होता है उसकी बात नहीं, अपना नियम ये दर्शन मोहनी के क्या वहां कौन सी अवस्था चलती है, तो अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी की नहीं है, वो दर्शन मोहनी का भाग नहीं, वो चारित्र मोहनी है, इसलिए उन कर्मों की अपेक्षा कौन सा भाव है उसको यहाँ नहीं लिया। इसलिए अनंतानुबंधी का उदय हुआ, तो अनंतानुबंधी का उदय तो पहले गुणस्थान में भी है, उसको सासाधन क्यों नहीं कहते? हाँ, चौथे से गिरता है, और जो प्रथमोपशम के काल में चौथे में से या ऊपर के गुणस्थान में से गिरकर सासाधन में आता है, उसका एकमात्र कारण अनंतानुबंधी का उदय है। पर वो कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनी है। और हमें किस भाषा में बोलना है? यहाँ दर्शन मोहनी की भाषा। इसलिए क्या लिखा ना यहाँ, वह चारित्र मोहनी है, इसलिए उसे दर्शन मोहनीय मानने में विरोध आता है। वो भले मिथ्यात्व के साथ मिलकर काम करता हो, परंतु वो है तो चारित्र मोहनीय, उसको हम दर्शन मोहनीय कह नहीं सकते, मान नहीं सकते। ये देखो देखो शंका, अनंतानुबंधी चतुष्क चारों दर्शन और चारित्र दोनों का मोहन करने वाला है। ये तो डबल एजेंट है ना, कि दर्शन मोहनी का भी घात करता है, दर्शन मोहनी का नहीं, दर्शन का है नहीं, सम्यक्त्व का भी घात करता है, क्योंकि अभी चौथे से में दूसरे में जो आया है सम्यक्त्व का तो घात कर दिया है, तो यानी सम्यक्त्व को भी घातने की इसमें शक्ति है, और चारित्र का तो घात करता ही है। तो यहाँ लिखा है शंकाकार की शंका है, अनंतानुबंधी चतुष्क दर्शन और चारित्र दोनों का मोहन करने वाला है। समाधान, भले ही अनंतानुबंधी चतुष्क उभय मोहनीय हो, नाम क्या दिया, उभय मोहनीय, किंतु यहां वैसी विवक्षा नहीं है, हम उसी विवक्षा से बात नहीं कर रहे। अनंतानुबंधी चतुष्क चारित्र मोहनीय ही है, इसी विवक्षा से सासादन गुणस्थान को पारिणामिक कहा है। अपनी विवक्षा क्या है, हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, उसकी बात है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहां अन्य औदयिक भाव नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। सारे औदयिक भाव चल रहे हैं ना वहां, एक मिथ्यात्व को छोड़कर सासादन गुणस्थान में बहुत सारे औदयिक भाव है, अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजबलन चारों के ही औदयिक भाव चल रहे वहां, क्रोध माना माया लोभ सभी है ना, और अन्य भी वेद का परिणाम है, लेशा के परिणाम है, गति, ये हमने सारे औदयिक भाव गिनाए हैं, वो सारे ही वहां पर है। असंयम भी है, अज्ञान भी है, असिद्धत्व भी है, एक मिथ्यात्व को छोड़े तो बाकी सारे औदयिक भाव वहां है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। दर्शन मोहनी की विवक्षा से यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है, इसलिए पारिणामिक लिया। अब अगला प्रश्न, सम्मा मिच्छा इट्ठी नाम कदम भवदी, जीव सम्यक मिथ्यादृष्टि किस कारण से होता है, यहां भी प्रश्न चिन्ह लगाना। यह सूत्र सुगम है, तो कहते हैं खवो व समियाय लब्धि, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव सम्यक मिथ्यादृष्टि होता है। हाँ, ये आपका ही प्रश्न पूछ रहे, देखो, चूंकि सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जीव सम्यक मिथ्यादृष्टि होता है, इसलिए उसके क्षयोपशमिक भाव नहीं बनता है, है ना, यही ना, देश सर्वघाती का उदय चल रहा है, उसका समाधान। सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धकों में सर्वघातीपना भले ही हो, सम्यक्त्व की अपेक्षा है ने सम्यक्त्व का भले ही घात किया हो, बरोबर, किंतु अशुद्धने की विवक्षा से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धकों में सर्वघातीपना, व के ऊपर अफार देना, अस्पष्ट है, सर्वघातीपना नहीं होता, क्योंकि उनका उदय रहने पर भी मिथ्यात्व मिश्रित सम्यक्त्व का कण पाया जाता है, मिश्र अवस्था है ने, सर्वघाती स्पर्धक तो उन्हें कहते हैं जिनका उदय होने से मूल यानी प्रतिपक्षी, उसका जो प्रतिपक्षी गुण है उसका घात हो जाता है। जन्म कहां से आया, तानी सव्वघादी फद्दयानी उच्चंती जैसिम उदयेन सव्वम घाती जदि, ये जन्म शब्द नहीं चाहिए, किंतु सम्यक मिथ्यात्व में तो हम सम्यक्त्व का निर्मूल विनाश नहीं देखते। ये जो मिश्र अवस्था है ना, जात्यंतर कही उसके, अलग ही जाति का परिणाम हो जाता है वहां, क्योंकि यहाँ सद्भुत और असद्भुत पदार्थों में समान श्रद्धान होता देखा जाता है। सद्भुत यानी जो जैसा है वैसे, और असद्भुत यानी है ही नहीं वैसे, दोनों की अश्री अलग टाइप की श्रद्धा हो जाती है उनके, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का क्षावश्रमिक भाव बन जाता है। अब एक रह गया सम्यक तो मार्ग नाम है मिच्छा दृष्टि। मिच्छा दृष्टि नाम कदम भवदी, जीव मिथ्या दृष्टि किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। नाम कदम भवदी, ये क्यों होता है, नाम क्यों होता है ऐसे ने जीव नाम नाम ही नहीं वो जीव क्या, हाँ संज्ञा, यह सूत्र सुगम है। अब 81 नंबर, मिच्छत्तस्य कम्मस्य उदयेन, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, दंड देना, दंड ने वो हिंदी वाला फुल स्टॉप, यह सूत्र भी सुगम है। तो यहाँ औदयिक भाव होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ मिथ्यात्व का उदय से है ना, तो यहाँ उदय कहेंगे हम। ये तो सम्यक तो मार्गणा यहाँ समाप्त होती है। अभी सन्नी अणु वादे न सन्नी नाम कदम भवदी, अभी संगी मार्गणा है तो उसके भेद कितने हो गए, हाँ तो असंगी जीव कौन कौन से है बोलो दीपेश भाई, हाँ एकेंद्रिय से कौन सा असंगी, पंचेंद्रिय तक के सारे ही असंगी कहेंगे, और संगी पंचेंद्रिय वो तो संगी मार्गणा यानी संगी का भेद होगा वो, और जो संगी और असंगी दोनों नहीं ऐसे कौन है, सिद्ध भगवान, और हाँ 13वें 14वें वाले को भी वो तो संगी असंगी से पार कहेंगे, मन के द्वारा जानना नहीं चलता, इसलिए देखो प्रश्न पूछा ना, संगी अनुवादेन सन्नी नाम कदम भवदी, संगी मार्गणानुसार जीव संगी किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर, खो व समी आए लद्दी, जैसे हमने एक इंद्रिय क्यों होता है, दो इंद्रिय क्यों होता है, वैसे यहाँ भी लगाना भी, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव संगी होता है, क्योंकि अभी एक क्षायोपशमिक भाव कैसे उसको बताते हैं, नो इंद्रियावरण कर्म के, नो इंद्रियावरण ने मन संबंधी जो ज्ञान है मन को नो इंद्रिय कहते हैं, और उसका आवरण वाला कर्म, असंगी जीवों में उस आवरण का उदय है और संगी में उसका क्षोभशम है, तो नो इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के अपनी जाति विशेष के कारण, कौन सी जाति विशेष, हाँ संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति है ना, तो जो संगी पंचेंद्रिय जिसका भी जिसकी जाति है अपने जाति विशेष के कारण, जैसे एकेंद्रिय जाति वालों को एकमात्र वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी देशघाती का उदय है और सर्वघाती पड़े, बाकी अन्य जो आवरण वाले हैं सबका उदय है, तो यहाँ लिखा जाति विशेष के कारण अनंत गुणी हानि रूप घात के द्वारा, यानी जो सर्वघाती है स्पर्धक उनमें जितना अनुभाग है फल देने की शक्ति, वो अनंत गुणा घटना यानी सर्वघाती में से देशघाती हो जाना, घात के द्वारा देशघाती पने को प्राप्त होकर उपशांत हुए उनके उदय संगीपना दे, उनके उदय से चाहिए ना, उपशांत हुए उनके उदय से चाहिए, उदयेन सन्नित्त दंशनादो, सन्नित्त दंशनादो क्या है ऊपर? देखा जाता है, हाँ बरोबर देखा जाता है, हाँ लिखा ना नीचे संगीपना देखा जाता है, उदय से करना है खाली। अब अगला सूत्र, असन्नि नाम कदम भवदी, ये दो बार कदम भवती हुआ है। जीव असंगी किस कारण से होता है, नीचे प्रश्न चिन्ह लगाना, उसका उत्तर अगले पृष्ठ पर देते हैं 85 नंबर की गाथा में। यह सूत्र सुगम है, अभी उसका उत्तर। औदयेन भावेन, औदयिक भाव से जीव असंगी होता है। देखो संगी में तो क्षौपशमिक भाव लगाया, क्योंकि वो नौ इंद्रियावरण का क्षौपशम चल रहा था ना, देशघाती का सर्वघाती होकर रहे हैं और उदय में भी देशघाती रूप से आ रहे हैं, इसलिए वहां संगी का क्षौपशमिक भाव घटित किया। अब असंगी में उसका उदय चल रहा है, नौ इंद्रियावरण का उदय चल रहा है, इसलिए वहां औदयिक भाव है। तो औदयिक भाव से जीव असंगी होता है, क्योंकि नौ इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से स्पर्धकों के असंगीपना देखा जाता है। नौ इंद्रियावरण कर्म असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि कार्य के अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कारण के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। यानी यहाँ कार्य पाया जाता है ना, नौ इंद्रियावरण कर्म जो है वो है, क्यों है? क्योंकि मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ नहीं है, इसलिए नौ इंद्रियावरण का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। और किन्हीं किन्हीं के मन संबंधी ज्ञान पाया जाता है तो उसका क्षोभशम भी सिद्ध हो जाता है। यानी कार्य के अस्ति नास्ति से वो कारण की सिद्धि होती है, अन्वय व्यतिरेक ने अस्ति नास्ति इस रूप से लेना यहां पर अर्थ। या दोनों ओर से व्याप्ति लगाते ना, जहां वो कारण है वहां कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है, इसको अन्वय व्यतिरेक कहना। अब कहते हैं नेव सन्नी नेव असन्नी नाम कदम भवदी कि जीव न संगी न असंगी किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर है खैयाए लब्धि, क्षायिक लब्धि से जीव न संगी न असंगी होता है। तो ज्ञानावरण कर्म के निर्मूल क्षय से, सभी प्रकार के ज्ञानावरण है अभी ना? पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय एक साथ हो जाता है, तो निर्मूल क्षय से जो नौ इंद्रिय निरपेक्ष लक्षण वाला जीव परिणाम उत्पन्न होता है। अभी जीव परिणाम कैसा है? नौ इंद्रियावरण से निरपेक्ष है, किसी भी आवरण से निरपेक्ष है। यानी अभी केवल ज्ञान ही उत्पन्न हुआ है, क्षायिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो उसमें नौ इंद्रियावरण का कोई अभी निरपेक्ष है वो। ऐसा जो जीव परिणाम है यानी जो ज्ञान है उसका, उसी को क्षायिक लब्धि कहते हैं। उसी क्षायिक लब्धि से जीव न संगी न असंगी होता है। अब आहार मार्गणा, आहार अनुवादेन आहारो नाम कदम भवदी। पहले हमने देखा था आहार मार्गणा के अनुसार कोई आहारक है और कोई अनाहारक है, तो आहारक किसको कहना? जो भोजन करता है वो आहारक नहीं? हाँ, तो नौ कर्म शरीर को जो ग्रहण करता है, नौ कर्म वर्गणा, उसको आहारक कहते हैं। नौ कर्म में आपने जो बताया शरीर संबंधी जो परमाणु है उसको ग्रहण करने वाला, उसको आहारक कहते हैं। ये तेजस वर्गना की बात नहीं लेना यहाँ। तो ये नौकर्म आहार वाला है, वैक्रियक भी है, औदारिक भी है और आहारक शरीर वाले भी परमाणु हैं। आहार वर्गना को ग्रहण करता है, परंतु उसको नौकर्म वर्गना को, क्योंकि उसको नौकर्म आहार कहा है। आहार का नाम क्या है? हमने 6 प्रकार के आहार देखे थे, याद है क्या? हाँ, कौन से कौन से? हाँ, कौलाहार, यानी जो हम भोजन करते ना कौड़ियों लेकर खाते उसको कौलाहार कहते हैं। हाँ, कौलाहार, लेपाहार, हाँ, ओजाहार, हाँ, मानसिक आहार, हाँ, कर्म आहार और नो कर्म आहार। तो ये 6 प्रकार के आहार। तो कर्म आहार तो अनादि से प्रत्येक जीव प्रत्येक समय में कर ही रहा है। नो कर्म आहार को कभी कभी छुट्टी मिलती है, कभी मिलती है विग्रह गति में, वो भी मोड़ वाली हो तो। मोड़ के पहले पहले वो कारमान काय योग पाया जाता है और उस समय कर्म का तो ग्रहण होता है, नो कर्म का ग्रहण नहीं होता है।
ये नो कर्म आहार कभी कभी लेता है बताया आपने, कभी उसकी छुट्टी नहीं होती है, ऐसा कहा ना?
नो कर्म आहार शरीर ग्रहण करने के पहले समय से लेकर मरण के समय तक नो तो कर्म का आहार चलता है। हाँ।
तो आपका कहना है कि अरहंतों को भी नो कर्म आहार है।
हाँ, अरहंतों को कौन सा आहार है? नो कर्म आहार है कि नहीं है? हाँ, अभी अरहंत को भी दो भेद हो गए, नो कर्म आहार वाले और बिना नो कर्म के आहार वाले। ऐसा क्यों? तेरहवें गुण स्थान में योग है हाँ, और शरीर नाम कर्म का उदय भी जो है, तो उसके कारण वहाँ शरीर के परमाणु का ग्रहण भी चल रहा है। एक्सेप्ट वो समुद्घात में 3 समय के लिए, प्रतर, लोकपूरण और प्रतर, वहाँ नौ कर्म का आहार नहीं है। और अयोगी केवली उनके भी शरीर जो पहले बन चुका है, शरीर तो है परंतु शरीर के परमाणु का ग्रहण अभी रुक गया है, क्योंकि योग का अभाव हो गया है और वो शरीर नाम कर्म का उदय भी मिट गया है, ख्याल है?
तो हाँ। इसलिए अरहंतों को भी आहार कहा गया है, लेकिन वह नो कर्म आहार का ग्रहण करेंगे, कौलाहार का नहीं। हाँ। ऐसा ही आपको बताना है।
हाँ। ना अरहंतों को कौलाहार नहीं है, कर्म नो कर्म का आहार भले हो उन कौलाहार, हम जैसा भोजन करते आहार ग्रहण करते, ये तो 7वें गुणस्थान के ऊपर है ही नहीं है। हमने संज्ञा में देखा था उनके 7वें गुणस्थान से लेकर आहार संज्ञा नहीं पाई जाती, आहार की इच्छा ही नहीं है, 6ठे में है 7वें से नहीं है, और ना ही उनके भूख लगती है, क्योंकि भूख लगनी प्यास लगनी ये तो असाता वेदनीय के उदीर्णा से होती है, और उदीर्णा 6ठे तक ही होती है, असाता की उदीर्णा हो असाता की, कौन से कर्म की उदीर्णा कहाँ तक हो सकती है, उदय कहाँ तक हो सकते है, ये सारे ही निश्चित है, उसके नियम है। तो ये अनेक पद्धति से हम करणानियोग के आधार से सिद्ध कर सकते हैं, अरहंतों के कौलाहार नहीं होता, ना ही उनके कोई रोग होता है, क्योंकि अरहंत अवस्था ही ऐसे होती, केवल ज्ञान उत्पत्ति होते ही पूर्व में कुछ हो तो भी सारा मिट जाता है, ना कोई उपसर्ग रहता है केवल ज्ञान होने पर। तो केवल ज्ञान होने पर ये उपसर्ग हो रहा है, ऊपर से कोई फना लगाकर उनका रक्षण करता है, ये कोई बात नहीं, सारे देव वहां सेवा करने आते हैं, इंद्र आके पूजा वगैरह करते हैं, केवल ज्ञान की ऐसी महिमा होती है। उपसर्ग अवस्था में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके भी केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग मिट जाता है पूर्ण रीति से। 6ठे में ही मुनि को जो आहार होता है वो 6ठे गुणस्थान में होता है, 7वें गुणस्थान का स्वरूप ऐसा है कि उसमें आहार नहीं होता, आहार की इच्छा नहीं होती। वो बहुत छोटा अंतर्मूर्त है शुद्धोपयोग वाला भी, ये हम वो मुनि के शुद्धोपयोग को नहीं समझते, 6ठा 7वां जो कंटिन्यूअस गुणस्थान है तो उपयोग अपने आप को पकड़ ले, तो उसमें शुद्धोपयोग नहीं, ऐसा ही बैठना चाहिए ऐसी बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है 7वें में गए नहीं, वो तो पलाटी मारकर ऐसे ही वो तो हाथ जोड़कर एक हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़े तभी जाके तभी आहार लेते लेते उनको हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना ये अंतर्मूर्त हम पांचों इंद्रियों को एक एक अंतर्मूर्त तक ही जानते हैं और फिर अपना उपयोग पलटता है तो क्या हमको ख्याल में आता है? हमें तो ऐसा लगे वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सुनना बोलना ये सब एट अ टाइम चल रहा है। वैसे उनकी पोजिशन ऐसी है, ये तो केवली गम्य बात है छठे का और सातवें का आना जाना। वो मुनि को ऐसा नहीं चलो अभी मैं छठे में आया मैं अभी सातवें में आया, उनकी तो इतने अंतरंग ऐसी परिणति चल रही है। तो ये समझाने के लिए इतना सारा आधार लेके आगम का आधार लेके समझाना पड़ता है। उनकी तो जो पोजीशन है उनकी जो भूमिका वही अलौकिक है, तो इसलिए चलते फिरते सिद्ध कहा उनको मुनियों को। हम तो उनकी बाह्य क्रिया ही को ही देखते हैं ना और उस पर से ही हम अपने परिणामों के अनुसार उनका अनुमान लगाना चाहते हैं जो नहीं लग सकता। ये इतना 48 मिनट वाला अंतर्मूर्त नहीं है, वो सेकंड का कुछ छोटा भाग है, वो बहुत अल्प।
देखिए आप जो कह रहे हैं कि 48 मिनट का जो अंतर्मूर्त है वो तो मैक्सिमम बड़ा अंतर्मूर्त का टाइम है, और स्वरूप में लीनता करने से जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है श्रेणी मानने के बाद वो अंतर्मूर्त तो बहुत अल्पकाल है। अभी क्या बताए सेकंड का भी कुछ भाग है।
ये पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे भी जीव चढ़े भी और उतरे भी तो भी वो छठे गुण स्थान से भी अल्पकाल सातवें का है और उससे भी अल्पकाल ये पूरी श्रेणी चढ़कर उतरने का है।
ये क्या है हमें ऐसी गलतफहमी हो गई है कि अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट तक अंतरंग में लीन होगा तो केवल ज्ञान होगा, वो तो बहुत वो बहुत स्थूल बात है।
आपका ऐसा प्रश्न है मुनि के ख्याल में आता है कि नहीं है? मुनि के तो ख्याल में आएगा ना, हमने कहा कितनी वितरकता। हाँ बिल्कुल, फिर भी असंख्यात समय है, असंख्यात समय है ना। शोभम पर असंख्यात समय में हम भी किसी चीज को असंख्यात समय में जानते उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उनके अपने वितरकता का पता नहीं चलेगा, इतनी निराकुलता का पता तो बिल्कुल चलेगा। हाँ चलता रहता है, समझते हैं उनके। देखिए हम कहीं जा रहे हैं और किसे में कोई लाखों की कोई हीरे रखे आप तो बिल्कुल जस्ट ख्याल कर लेते ना हाँ है ठीक है, तो क्या बाहर से देखने वाले को कुछ ऐसा पता चलता है? यानी अंदर कुछ हाँ चुभ रहा है ना चलो। ये तो बिल्कुल सामान्य उदाहरण है। देखो आगे तो ये आहार मार्गणा की बात चल रही है यहाँ। तो आहारणुवादे न आहारो नाम कदम भवदी 88 नंबर का सूत्र। आहार मार्गणानुसार जीव आहार किस कारण से होता है यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर दे रहे हैं उदयेन भावेन, औदयिक भाव से जीव आहारक होता है। यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, दंड देना। आगे लिखते हैं औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहारक होता है। ख्याल है ना यहाँ ये तीन शरीर नाम कर्म है, इसको तेजस कारमान को यहाँ नहीं लिया है। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से कर्म का आहार ग्रहण चलता है और तेजस शरीर ये तेजस और कारमान तो निरंतर उदय रूप है, ध्रुवोदयी कहा उसको, विग्रह गति में भी उनका उदय चलता है। परंतु ये आहारक वैक्रिक शरीर ये औदारिक शरीर आदि हमने देखे थे, अभी हमने नाम कर्म के उदय स्थान देखे थे। तो विग्रह गति में तो ये शरीर नाम कर्म का उदय नहीं था, शरीर और अंगोपांग नाम कर्म का उदय तो जहाँ जन्म लेना है वहाँ जाने पर होता है और तभी उस जाति के परमाणु का ग्रहण होता है, उसी को तो आहार कहते हैं। अब शंका ये आगे पूछ ही लिया उसने, तेजस और कारमन शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहारक क्यों नहीं होता? यहाँ प्रश्न चिन्ह कर देना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर विग्रह गति में भी जीव के आहारक होने का प्रसंग होता है, और वैसा है नहीं, क्योंकि विग्रह गति में जीव के अनाहारक पना देखा जाता है। वो भी हमने देखा था, जो मोड़ वाली विग्रह गति है उसमें अनाहारक पना है, जो सीधी लाइन में समझो यहाँ मरा और यहीं पर ऊपर उत्पन्न होना है उसको, इशु गतिया रुजु गति से जाता है, यहाँ एक समय पहले तो मनुष्य था, अगले समय में देव हुआ, बीच में मोड़ नहीं है तो उसका वो शरीर नाम कर्म का उदय आदि उसी समय वो शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ उसके अनाहारक पना बीच में नहीं होगा, मरण समय भी आहारक था, अगले समय भी आहारक रहा। तो जहाँ मोड़ वाली विग्रह गति है, एक मोड़ होगा तो एक समय के लिए अनाहारक, दो मोड़ हो गए तो दो मोड़ के लिए, और तीन मोड़ हो गए तो तीन मोड़ के लिए। अब आगे पूछते हैं, अनाहारो नाम कदम भवति, जीव अनाहारक किस कारण से होता है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाना। यह सूत्र सुगम है, ओदयेन भावेन पुनः खय्याय लद्धिये, क्या कहते हैं, औदयिक भाव से तथा क्षायिक लब्धि से जीव अनाहारक होता है, दोनों प्रकार से बताया। देखो, अयोगी केवली भगवान और सिद्धों के अनाहारकपना क्षायिक होता है, क्षय हो चुका है ना वहां, क्योंकि उनके क्रमशः घाती कर्मों का, क्रमशः क्यों लिखा, क्योंकि अयोगी के लिए घाती कर्मों का क्षय हो चुका है और सिद्धों के लिए समस्त कर्मों का क्षय है, किंतु विग्रह गति में औदयिक भाव से अनाहारकपना होता है, क्योंकि विग्रह गति में सभी कर्मों का उदय देखा जाता है, वहां का जो अनाहारकपना है विग्रह गति वाला, वो कुछ कर्मों के क्षय उपशम से या ऐसी कुछ अवस्था से नहीं उत्पन्न हुआ है, ख्याल है। हाँ, इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, ये डबल तो नहीं चाहिए, खाली स्वामित्व चाहिए, स्वामीपना, क्या कहते हैं, ये पहले में पहले उन्होंने 11 अनुयोग द्वार बताए थे, तो एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, फिर एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर कहने वाले, फिर नाना जीवों की अपेक्षा जो कुछ आगे बात बताएंगे वो, तो यहाँ तक हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व देखा, उसमें भी 14 मार्गणाएं लगाकर उन्होंने बता दिए। तो यहाँ ये एक अनुयोग द्वार यहाँ समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हम 114 पृष्ठ पर आगे हैं। एक जीवेण कालानुगमो, ये अगला अनुयोग द्वार चालू होता है, एक जीव की अपेक्षा काल, काल नाम का जो अनुयोग द्वार है, किसकी, एक जीव की अपेक्षा, अनेक जीवों की अपेक्षा काल नहीं कहेंगे, काल यानी जैसे गुणस्थान का काल, विशिष्ट गति में रहने का काल, तो नरक गति में रहने का काल कितना है, तो वहां हम एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा कहना है तो नरक गति हमेशा ही चलती रहेगी, तिर्यंच गति हमेशा ही चलती रहेगी, यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है ना, अभी हमेशा चलती रहेगी, उसके ऊपर याद आया मुझे, ये जो डार्विन्स थियरी या अन्य अन्य थियरी होती है ना साइंटिस्ट की, क्या उत्क्रांति हुई, कैसे उत्क्रांति हुई, पहले वो तो छोटे छोटे जीव थे, फिर उसमें से उनकी डेवलपमेंट हो गई, फिर वो तिर्यंच बन गए, बंदर बन गए, फिर आदमी की उत्पत्ति हुई, तो क्या तभी मनुष्य गति नहीं थी, चार गति में से क्या तीन ही गति थी, यानी ये सारे उत्क्रांति हो गई, ये जो कोई थियरीज है ना वो कैसे झूठी है ये सिद्ध होता है, ख्याल है मैं क्या, फिर उस समय भी चारों गति थी, मनुष्य गति भी, अभी यहाँ आपको नहीं दिखाई दी तो क्या कौन करे तो साइंटिस्ट उसको कहना है जिसकी खोज अधूरी है और जिसकी कोई खोज बाकी नहीं रही है, जो सब कुछ जान लेता है वो सर्वज्ञ है, अभी हमको डिसाइड करना है, हमको साइंटिस्ट की बातें सच उस पर भरोसा करना है कि सर्वज्ञ की बात पर। आजकल हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़े लिखे हुए ना, तो जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है और जो आगम में आता है, हाँ ये दोनों मिलते हैं ना, फिर इसको हम मानेंगे। परंतु जो आगम में आता है साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं है, तो मानना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया वनस्पति में भी जीव होता है, तो हाँ हाँ, अभी पृथ्वी अग्नि वायु उसमें चाहे वे क्या जीव थोड़े ही है, ऐसे लगता है ना। ये सबकी समस्या है, जो विचार नहीं करते हैं और जो विश्वास रखना नहीं चाहते। अभी उनकी होनहार ही ऐसी है, हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, अपनी खुद की चिंता करने के लिए बहुत कुछ बाकी है दुनिया भर की बात है, परंतु सब जगह विश्वास कहाँ है। वहाँ तो लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे लोगों को डराने के लिए ऐसे, ये तो पुराण में लिखी हुई बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो अभी ऐसा है ना, काल की महिमा अपार है ये, जब काल में तो और कैसे कैसे जीव हो गए। ये जो सम्यक दृष्टि को जो आस्तिक के भाव कहा है, ये सारी चीजें है, चार गति है, स्वर्ग नरक है, अरिहंत है, होते ही है, सर्वज्ञ है, उनकी विद्यमानता है, और सर्वज्ञ का स्वरूप ऐसा ही है, और मैं भी जीव हूँ, आत्मा हूँ, ये है वाली जो चीज है। अभी जो नास्तिक कहलाता है या जो कोई, ये कुछ है ही नहीं, क्या जानता है वो, पैसा, हाँ पैसा है, और पैसे में सुख बिल्कुल है, ये तो मानता है वो, क्योंकि कुछ ऐसे थोड़े ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं, तो उसको लगता है बस यही है जो दिखता है सामने, कुछ उपलब्ध है वही है। मैं तो उसके पीछे भी कितनी आकुलता है, क्या क्या है, वो तो उसकी समझ में नहीं आता, जब समझ में आने लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है ना? अभी हम अपनी बात करेंगे। देखो, एक जीव है ना कालानुगम, एक जीव की अपेक्षा काल नाम का यह अनुयोग द्वार यहाँ प्रारंभ होता है। एक जीव है ना कालानुगमेन गदियाणुवादेन, क्या कहते हैं यहाँ अपेक्षा कौन कौन सी, एक जीव की अपेक्षा काल बताएंगे। अब काल बताएंगे तो ये तो 14 मार्गणा पर बताएंगे, अब उसमें गति मार्गणा के अनुसार, निरय गदीये नेरैया केवचिरम काला दोहोंदी, तो कहते हैं इसका अर्थ एक जीव की अपेक्षा कालानुगम से। ये अनुगम का अर्थ हमने पहली धवला की पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा, अनु एने अकॉर्डिंगली, आगम के आधार से, आगम के अनुसार, अनु शब्द जब आता है ना, हाँ तो अनु ने उसके समान, ये उसका आधार से, आगम के आधार से जो बातें बताई है वहाँ यहाँ अनुगम कहा है। तो कालानुगम यानी आगम में जैसे बताया है वैसा, गति मार्गणा के अनुवाद से, अनुवाद यहाँ भी वैसा है, वाद यानी कथन, अनु यानी अकॉर्डिंगली, नरक गति में नारकी कितने काल तक रहते हैं, अभी यहाँ मार्गणाओं की बात पूछेंगे, हर एक मार्गणा में रहने का एक जीव की अपेक्षा काल, उसमें भी अधिक से अधिक काल और कम से कम काल दोनों बताएंगे। शंका, यहाँ मूलौघ अर्थात गति सामान्य की अपेक्षा प्ररूपणा क्यों नहीं की, क्या कहते हैं यहाँ गति की अपेक्षा ऐसा क्यों नहीं कहा। मूलोग ने सामान्य कथन पहले कहना था, फिर चार गति की अलग अलग बातें करनी थी, कि गति में रहने का काल ऐसा क्यों नहीं लिखा, प्रश्न ख्याल में है? हाँ। समाधान, नहीं, क्योंकि चारों गतियों के प्ररूपण से उसका ज्ञान हो जाता है। चारों गति में तो प्ररूपण कर ही रहे, हरे गति में रहने का काल कितना कितना है, तो उससे वो सारा समझ में आ जाता है। सूत्र में नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों का निषेध करने के लिए किया है, एक ही गति की बात यहाँ की है। अब इस सूत्र में देवगति, मनुष्य गति और तिरंच गति की बात नहीं है, अकेले नरक गति में जीव का, एक जीव के रहने का कितना काल है उसकी बात है, अब वो बताएंगे। जहन्ने न दसवस्थ सहस्राणी, जीव जघन्य से 10,000 वर्ष तक नरक गति में रहता है। यानी नारकियों की आयु कम से कम कितनी है, तो 10,000 वर्ष। क्योंकि किसी तिर्यंच या मनुष्य के 10,000 वर्ष की आयु स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न होकर वहां से निकले जीव के नरक में 10,000 वर्ष प्रमाण स्थिति हो जाती है या देखी जाती है। दंसनादो है ना, दसवस्थ सहस्रम एतत्थिति दंसनादो, 10 वर्ष प्रमाण स्थिति देखी जाती है। लिखो तो अच्छा है। अब तीसरा सूत्र, उक्कसेन 33 सागरोवमाणी। अब ये सारे सूत्र और उसके उत्तर आसान है, क्योंकि कितना काल है एक जीव की अपेक्षा, कम से कम कितना है, अधिक से अधिक कितना, इसको गिनाएंगे। अभी जीव उत्कृष्ट से 33 सागरोपम काल तक नरक में रहता है। किसी तिर्यंच या मनुष्य के सातवीं पृथ्वी में 33 सागरोपम की आयु स्थिति को बांधकर वह वहां उत्पन्न होकर अपनी स्थिति पूरी करके निकले हुए जीव के 33 सागरोपम मात्र नारक भाव पाया जाता है। वहां नरक में रहता है, उसके दूसरे शब्दों में लिखा है नारक भाव पाया जाता है। हाँ, बीच में एक लाइन देना यहाँ पर अगले पृष्ठ पर। अब 4 नंबर का सूत्र। अब नरक में तो बात है, अभी पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी की बात करेंगे। पढ़माए पुढ़विए नेरैया केवचिरम कालादो होती। प्रथम पृथ्वी में नारकी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, कितने काल तक, यह शब्द समय क्षण लव मुहूर्त दिवस पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग पूर्व पल्योपम व सागरोपम आदि काल मानों की अपेक्षा रखता है। काल माने ने काल का माप, काल का सबसे छोटे में छोटा यूनिट जो है वो समय है। फिर समय के बाद क्षण लिया, क्षण में तो जैसे हम सेकंड वगैरह कहते ना, एक क्षण के लिए अनेक समयों का क्षण होगा। फिर उसमें लव मुहूर्त, मुहूर्त यानी 24 मिनट का मुहूर्त होता है। अभी लव का एग्जैक्ट माप हमने पहले देखा था, मुझे अभी याद नहीं, आपको याद है क्या? लव पहले मैंने भी, अच्छा कल देखेंगे हम। मुहूर्त तो 24, अंतर मुहूर्त किसको कहते हैं, 48, दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। दिवस ये तो मालूम है, हाँ 24 घंटे, या अहोरात्र मिलकर 24 घंटे भी बताएंगे हम। पक्ष 15 दिवस, मास यानी 1 महीना, ऋतु साल में 2 महीने का ऋतु होता है, एक साल में 6 ऋतु है ना, वसंत ग्रीष्म वगैरह वो सारे। हाँ, अयन यानी 6 महीने, दक्षिणायन उत्तरायन कहते हैं हम। संवत्सर यानी 1 साल, युग 12 साल का होता है ना, युग कितने साल का होता है, और पूर्व कितना है, भूल गए, एक पूर्व कितना होता है, 84 लाख का स्क्वायर, 70,56,000 करोड़ वर्ष। पल्योपम तो असंख्यात वर्ष जाते हैं उसमें। युग 12 है ना, 12 को तप कहते हैं, तप 12 का युग, 5 का क्या, 5 वर्षों का एक युग, क्योंकि 12 वर्ष को तप कहते हैं। कल दोबारा देखें, युग ने वो तो बहुत बड़ा लंबा काल, उसको युग पुरुष कहते हैं। युग ने अब इस कलि युग, कलि युग ऐसा जो है ना, वो बड़ा, एक बड़ा काल होता है, वो वो युग नहीं, यहाँ पर जो 5 वर्ष का होता है युग। हाँ पहले हमने पहले देखा भी था, अभी कल निकाल के रखेंगे, अभी ढूंढने में टाइम जाएगा। अभी देखना है सिद्धांत कोश में। अच्छा देखना, उसमें से भाग दूसरा देना, अरविंद भाई को देना, वो निकालना, वो कपाट खोलना नीचे से दूसरे खाने में, राइट साइड में जिस पर 5 अंक लिखा है ना, जैन सिद्धांत कोश, 1 2 3 4 5 लिखा है, तो 2 नंबर का देना। नहीं नहीं वो निकाल रहे, हाँ अरविंद भाई को दे देना। हम पढ़ेंगे तभी। ये काल मान है ना, काल, काल का माप। तो कहते हैं जहन ने ना 10 वास सहस्रानि, ये जो बात है 10,000 वर्ष है, तो पहले नरक में ही हो सकता है, अगले अगले नीचे नीचे नरकों की आयु बड़ी बड़ी है। तो प्रथम पृथ्वी में नारकी जीव जघन्य से 10,000 वर्ष तक रहते हैं। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसकी प्ररूपणा ओघ नारकियों की प्ररूपणा में की जा चुकी है। ओघ नारकिया ने सामान्य से, सामान्य सभी नारकियों के लिए जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया, और ये प्रथम पृथ्वी में भी जो जघन्य काल बताया वो समान है, क्योंकि वहाँ सामान्य से नारकियों में जघन्य काल बताया था, और वो जघन्य काल प्रथम नरक में होता है, इसलिए यह अर्थ सुगम है। उक्कसेन सागरोवमम, ये पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु है। सबकी मिलकर हमने 33 सागर देखी थी, पर अकेले पहली पृथ्वी में कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 1 सागर। प्रथम पृथ्वी में नारकी जीव उत्कृष्ट से 1 सागरोपम काल तक रहते हैं, क्योंकि प्रथम पृथ्वी की 1 सागरोपम आयु स्थिति को बांधकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होकर वह अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से निकलने वाले तीर्यंच और मनुष्यों के 1 सागरोपम की नगर स्थिति पाई जाती है। शंका, यह जो प्रथम पृथ्वी की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है, सो क्या सीमंत नरक रौरव भ्रांत उद्भ्रांत संभ्रांत असंभ्रांत विभ्रांत तप्त त्रसित वक्रांत अवक्रांत और विक्रांत नामक 13 इंद्रकों की तथा उनसे संबद्ध श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक सब बिलों की यही आयु स्थिति होती है या नहीं होती है, क्या कहना चाहते हैं? मिला ना आपको कालमान? एक मिनट, देखो समय तो हमें मालूम है, छोटे में छोटा। हाँ पेज नंबर, ये जो गणित वाला प्रकरण है 216 नंबर का पृष्ठ है, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 2, 216 नंबर का पृष्ठ। अभी हाँ लव, यहाँ एक समय तो हमें मालूम है वो परमाणु का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मिनिमम कम से कम टाइम लगता है, उसको समय कहा था। अब उसके बाद हमने आवली उच्छ्वास तोक वगैरह बीच में है, तो उसमें लव की बात की है कि 7 स्तोक का एक लव है, यानी लव में 37.3177 अंश सेकंड होते हैं एक लव, यानी 37.5 सेकंड ले लो ना राउंड अबाउट, उसका एक लव होता है। हम कहते ना लव मात्र, ऐसा कहने में आते हैं लव नहीं, 37.3177। देखो उसमें ऐसा समझाया है, जगन्य युक्तता संख्यात समयों की एक आवली होती है, बराबर संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है और 7 स्तोकों का एक लव होता है। अभी 38.5 लवों की एक घड़ी होती है, यानी 24 मिनट। एक मुहूर्त तो हमने देखा था, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र यानी दिवस होता है, 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में पूरे 24 घंटे में, दो पक्ष का एक मास, दो मास का एक ऋतु, तीन ऋतु यानी 6 महीने का एक अयन, दो अयन यानी एक वर्ष यानी एक संवत्सर कहते हैं, और उसमें अभी युग लेना था ना, युग नहीं आया इसमें, युग युग वर्ष शत शतवर्ष नामक्रम भेद, युग को ही वर्ष शत कहा, वर्ष सहस्र कहा, कहा नहीं नहीं ये अलग बात है। लो लो नाली मूर्त मूर्त वो तो युग पुरुष अपेक्षा वो युग अलग होता है। ठीक है इतना तो अभी हमने देखा, ये हमें मिलेगा युग हाँ। ये तो हो गया ना, देखो ये क्या पूछा शंका वो ये समझ में नहीं आई, ये जो जघन्य और उत्कृष्ट बताई है आयु तो वो कहाँ होते हैं, और ये सब बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी उन्होंने हाँ? तो नरकों में क्या होता है, एक सेंटर का बिल होता है हाँ? और उसके बाद बाजू में एक पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ये दिशाओं में होते हैं, श्रेणीबद्ध कहते हैं इन लाइन, और बीच में एट रैंडम होते हैं उनको प्रकीर्ण कहते हैं। स्वर्गों में भी और नरकों में भी ऐसी अवस्था होती है, सेंटर वाला होता है और कुछ बाजू वाले होते हैं, तो सेंटर वाले को इंद्रक कहते हैं। हाँ दो पक्ष एक मास आगे आगे 5 वर्ष का एक युग है, वो मैंने राइट साइड में देखा था नहीं था वर्ष दशक वर्ष शतक का है वो अलग बात है। ये जो यहाँ 13 नाम दिए हैं, उसको इंद्रक कहा, यानी इंद्रक बिल यानी सेंटर वाले हाँ, जी प्रत्येक पटल में सेंटर में एक एक बिल होता है, और उसके सभी ओर ये टॉप व्यू है, एक सेंटर का और एक ये हर एक दिशा में पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में भी होते हैं, और ये इन बिटवीन भी होते हैं, तो सेंटर वाले को इंद्र कहते हैं, जो अभी यहाँ 13 नाम बताए, 13 जैसे यहाँ एक एक मंजिल होती है, वहाँ नरकों की भी वो पाथड़े या लेयर्स होंगे, उसमें वो अलग अलग पाए जाते हैं, तो सेंटर में है उसको तो इंद्रक कहेंगे, ये इंद्रकों के नाम भी थे, तथा उनसे संबद्ध श्रेणीबद्ध ये जो 4 दिशाओं में है एक लाइन में उसको श्रेणीबद्ध कहते हैं, और प्रकीर्णक यानी एट रैंडम इन बिटवीन जो कुछ है उसको प्रकीर्णक कहते हैं। तो इनका प्रश्न है क्या इन सब बिलों में यही आयु की स्थिति है जघन्य और उत्कृष्ट या नहीं है, ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर, प्रथम पृथ्वी के उक्त समस्त बिलों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु इतनी ही नहीं होती, किंतु सब बिलों की पृथक पृथक जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है। ये तो इन जनरल पहले नरक की जघन्य उत्कृष्ट बता दी, परंतु वहां हर एक बिल की अपनी अपनी जघन्य उत्कृष्ट अलग होगी, वह इस प्रकार है। अब इसको बता रहे, अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंत नामक प्रथम इंद्रक में सीमंत नामक प्रथम इंद्र के ने पहला पलटाव ऊपर का। जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रमाण होती है। 10,000 वर्ष से लेकर 90,000, ये पहला ऊपर सबसे ऊपर का नरक। तो सब सबको मिलकर पहला नरक कहेंगे, परंतु उसमें भी 13 लेयर्स है। सबसे ऊपर वाला जो प्रथम पाथड़ा कहेंगे, उसको पाथड़े कहेंगे। स्वर्गों में भी ऐसे विमान लेयर्स पाए जाते हैं। तो पहले नरक में है 13, सबसे ऊपर कम आयु, नीचे नीचे अधिक। तो पहला जो सीमंत जो है, सीमंत नाम का इंद्रक बिल और उसके अपने अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, उनमें मिनिमम तो 10,000 और मैक्सिमम उत्कृष्ट 90,000। दूसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90,000 वर्ष। ऊपर की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय बढ़ा दो वो नीचे के पाथड़े का, हाँ वो जघन्य आयु। और उत्कृष्ट 90,00,000 वर्ष प्रमाण होती है, 90,000 से लेकर 90,00,000 तक। तीसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90,00,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि प्रमाण होती है। ये एक सागर तक बढ़ाएंगे ना, तो असंख्यात पूर्व कोटि। तीसरे पाथड़े में इतनी हो गई। चतुर्थ पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक असंख्यात पूर्व कोटि और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम के दशम भाग होती है। चौथे पाथड़े की बात, यही सागरोपम का दशमांश आगे के पाथड़ों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु प्राप्त करने के लिए मुख कहलाता है। मुख नहीं, मुख चाहिए। आगे का गणित निकालना है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ सागर का दसवां भाग है, एक दशांश सागर, क्योंकि वह अल्प है, क्योंकि नीचे नीचे भी बढ़ने वाली है। तथा पूरा एक सागरोपम भूमि कहलाती है। भूमि यानी वो उत्कृष्ट, मुख यानी मिनिमम, भूमि यानी वो जो नीचे सब मैक्सिमम, पहले नरक के अंतिम पाथड़े में एक सागर है। और यहाँ पर अभी हमने जो स्टार्ट किया वो 1/10 है, सागर का दशांश है। तो क्रम से उतना बढ़ता जाएगा आगे आगे। ये कहाँ तक, यह है चतुर्थ पाथड़े की बात है ना, यहाँ चतुर्थ के उत्कृष्ट आयु। देखो चतुर्थ पाथड़े में उत्कृष्ट कितनी है, नहीं जघन्य है, जघन्य एक समय अधिक असंख्यात पूर्व कोटि, उत्कृष्ट एक सागरोपम का दसवां भाग, ये चौथे की उत्कृष्ट हुई। अब ये गणित समझाएंगे। हाँ, ये भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके, भूमि कितनी है एक सागर और मुख है एक दशांश सागर, तो एक सागर को एक दशांश के द्वारा भाग देंगे तो कितने टुकड़े होंगे उसके, 10 हो गए ना, 10 भाग हो गए। तो समान भागों में खंडित करके उसमें से मुख को घटा देने पर शेष मान यानी शेष प्रमाण कितना रहा, 9 दशांश रह जाता है। पूरे एक में से 1/10 निकल दिया तो एक के बदले 10 दशांश लिखेंगे, 10/10 -1/10, हाँ तो 9/10 रहते हैं, 9 दशांश रह जाएंगे। यहाँ वही लिखा है, ऊपर 10 और नीचे 10, उसका अर्थ होता है एक। गणित कल समझाना पड़ेगा, अभी थोड़ा देखो। ये एक में से एक दशांश निकल गया, एक दशांश निकालना था तो ये समान छेद करने के लिए, यहाँ तो एक ही था, एक एकांश, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह समान संख्या से गुणा करेंगे तो वही वैल्यू उतनी रहती है, इसलिए गणित करने में सुलभ हो जाता है। तो छेद दोनों का समान है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते, 10 में से गया 9 दशांश रह गए। अब ये पूरा ही गणित हम कल देखेंगे, ये मुख और भूमि की अपेक्षा से। जावाणी के ज्ञान